متوفاه. الحمد لله متوفاه. سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، कल की मजलिस जो कि हमने तकरीबन 3 हफ्तों के बाद शुरू की, उस पे हमने नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस का तذکرہ किया कि जिसमें आपने 7 ऐसे खुशकिस्मत लोगों का तذکرہ फरमाया कि जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि कयामत के दिन ये इतने अल्लाह के यहाँ मोतबर होंगे, इन्होंने ऐसे आमाल किए होंगे कि अल्लाह उनको अर्श का साया देगा जब और कहीं साया नहीं, यानी लोग धूप में पिघल रहे होंगे, इतनी सख्त धूप। और ये आमाल करने वाले लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि इनको साया मिलेगा, बल्कि इनकी इज्जत और तकरीम इतनी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें अपने अर्श का साया देगा। तो ये कयामत के दिन के सुपरस्टार्स। और ये 7 में से कल हमने उस पहले शख्स का तस्करा किया, और ये वो शख्स जो कि आदिल बादशाह है, जिसने बादशाहत में इंसाफ किया। और बादशाहत में इंसाफ करने पे इतनी बड़ी तकरीम और इतनी बड़ी इज्जत क्यों? क्योंकि बादशाह बन के इंसाफ करना जरा मुश्किल काम है। इंसान अपने घर में बैठ के इंसाफ नहीं कर सकता, 4-5 बच्चे हो तो उनमें कई मरतबा कमी बेशी रह जाती है। तो जिसके मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जबानों वाले, मुख्तलिफ रंगों वाले, मुख्तलिफ दीनों वाले, मुख्तलिफ इलाकों वाले लोग, मुख्तलिफ नस्लों वाले लोग अगर हैं, सबके दरमियान इंसाफ करना आसान काम नहीं। अगर कर गया इंसाफ तो इसका मतलब है कि दिली तौर पे बहुत ही नेक इंसान था, तो इसलिए उसके लिए इतनी बड़ी तकरीम रखी गई। कल की मजलिस में 2 सवाल जवाब दिए बगैर रह गए, और एक तो ये कि क्या ये सिर्फ इंसाफ पसंद बादशाह के लिए ही ये तकरीम है कयामत के दिन? तो हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ बादशाह के लिए नहीं, बल्कि हदीस में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो है अल इमाम अल आदिल, कि जो भी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी में है, यानी ऐसी पोजिशन में है जहां वो लोग उसके मातहत हैं, तो हर उस शख्स ने अगर इंसाफ किया तो उसके लिए भी ये खुशखबरी कयामत के दिन की है। और सच्ची बात यह कि हम में से हर बंदा किसी न किसी तौर पे कुछ लोगों को मैनेज कर ही रहा होता है, और कुछ नहीं तो अपने घर में अपने बच्चों को तो मैनेज कर ही रहा होता है, मगर कुछ लोग हैं उससे भी ज्यादा होता है, घर में बच्चे भी होते हैं, घर में मुलाजिम काम काज कर रहा है, तो फिर वहां पे भी उसके नीचे लोग काम करते हैं, कोई इदारा है, कोई और ऐसी चीज है, मिलके काम कोई कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी सूरत हाल आ जाती है जहाँ इंसान जो है वो उसके नीचे मातहत होते हैं। और यही बात अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाई कि कुल्लुकुम राइनुन وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعْيَتِهِ, कि तुम में से हर एक जो है उसके नीचे लोग हैं, और वो जो नीचे लोग हैं उनके बारे में तुमसे सवाल जरूर किया जाएगा। तो ये हदीस जो है उसका इतलाक सिर्फ आदिल बादशाह, इंसाफ पसंद बादशाह पे नहीं है कि इंसाफ पसंद बादशाह को कयामत के दिन अर्श का साया, हर इंसाफ पसंद शख्स को कयामत के दिन अर्श का साया मिले। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ने इंसाफ पसंद बंदे के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान किया, वक्सितु, तुम इंसाफ करो। वल्ला इन अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ पसंद लोगों से मोहब्बत फरमाता है। तो इंसाफ करना, जुल्म से बचना बड़ा काम है। अगर किसी ने कर लिया है उसका मतलब है दिली तौर पे नेक है। और कई मरतबा इंसान इल्म भी हासिल कर रहा होता है और इबादत भी कई मरतबा कर रहा होता है, मगर जुल्म खूब करता है, तो यही समझा जाएगा कि अभी दिली तौर पे नेक नहीं हुआ है। और ये जुल्म करना ऐसा नहीं है कि इंसान बच पाएगा। जालिम बच नहीं सकता इस दुनिया में। एक इंसाफ की तरतीब अल्लाह ने बनाई हुई और वो तरतीब हमें अल्लाह के प्यारे महबूब ने बताई है। और बहुत सीधी सीधी तरतीब है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है कि जो शख्स किसी को नुकसान पहुंचाएगा अल्लाह उसे नुकसान पहुंचा लेगा। जितने ही शेर बन के कर ले ये काम, कोई रोकने वाला ना हो, नुकसान आएगा। ये नस्ल कशी कर रहे हैं फलस्तीन में, ये क्या समझते हैं? अपनी तारीफ पढ़ के देख ली, कोई ऐसा अल्लाह ने उनपे भी मुसल्लत कर दिया था जो इनकी नस्ल कशी कर रहा था? तो ऐसा ना हो, फिर से ऐसा उनके साथ हो जाए। अजीब बात तो ये है कि उन्हीं के लोग उनको समझा रहे थे, जहां पूरी इस्लामी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं कि जी ये बहुत ज्यादा जुल्म है, इसराइल में भी मुजाहरे हो रहे हैं, यहूदी मुजाहरे कर रहे हैं, और अपनी हुकूमत को समझा रहे हैं कि ऐसा ना करो, ये तुम पे लौट के आए। तो आम इंसान समझता है कि जुल्म जो है अनचेक्ड नहीं जा रहा, गुनाह भी अनचेक्ड नहीं जा रहा। एक जात है जो उसको देख रही है और जब उसने फैसला करना है तो फिर किसी ने रोकना नहीं है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम, जिसने किसी को नुकसान पहुंचाया अल्लाह उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जिसने किसी को मुशक्कत में डाला अल्लाह उसको मुशक्कत में डाले। तो इसलिए इंसाफ पसंदी पे तो अर्श का साया है, और अगर तबीयत इंसाफ पसंदी के खिलाफ है, ज्यादती करने वाली तबीयत है, तो फिर दुनिया और आखिरत की मुश्किलात के लिए तैयार हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए जो दूसरों के लिए सहूलत करता है, ईसार करता है, अपना हक छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया में सहूलत। हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये अल्लाह के प्यारे महबूब फरमा रहे हैं, फिर से तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि जिस शख्स पे जुल्म हुआ और उसने उस जुल्म पे सब्र कर लिया अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमा। और जुल्म हो रहा है मगर आगे इज्जतों का दौर भी है, इस पे ईमान रखते हैं। तो दो सवाल कल की मजलिस में, पहला सवाल ये कि क्या ये सिर्फ बादशाह के लिए? तो बादशाह के लिए नहीं, हर शख्स जो इंसाफ पसंद है उसके लिए कयामत के दिन अर्श का साया। और दूसरा ये कि जिसकी तबीयत इंसाफ के खिलाफ है उसका क्या हाल, वो बच नहीं सके। चनांचे हदीस पाक में आता है कि मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इसलिए मजलूम बनना फिर बेहतर है। अगर जुल्म हो जाए हमारे ऊपर तो वो फिर बेहतर है जालिम बनने से। अगर यही ऑप्शन है कि या मैं जालिम ही बन सकता, सूरत हाल कोई ऐसी आ जाती है ना कि इंसान कहता है कि या तो मैं जालिम बनूंगा या मैं मजलूम, तो बेहतर है कि इंसान जालिम ना बने, मजलूम। नेक आदमी जो है ना वो जालिम आमतौर पर नहीं होता है, उससे जो जुल्म होता है वो आमतौर पर मजबूरी की वजह से होता है, वो करना नहीं चाहता पर कर बैठता। अगर सच्ची बात ये होती है, गलतियां ऐसी करता है कि अल्लाह ताला उसको इस गलती पर भी डाल देते हैं, ये जो गुनाह है ये ऐसे ही नहीं होता, इंसान एक गुनाह करता है उसकी जजा है दूसरा गुनाह। तो कई मरतबा जिंदगी में ऐसी गलतियां की होती हैं, ऐसे गुनाह की होता है कि फिर अल्लाह ताला इस जुल्म वाले गुनाह में भी डाल देते हैं, करना नहीं चाह रहा होता फिर कर बैठता है। हमारे मुल्क का एक नौजवान गांव में रहता था, वालदेन का इकलौता बेटा था, माँ को बड़ा शौक था कि इसको अच्छा पढ़ाओ। माँ ने अपना सारा जेवर बेचा, सब कुछ बेच के उसकी तालीम में लगा दिया, और इलाके में जो सबसे अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी थी वहां से उसको पढ़ाया, सारी जायदाद उसकी पढ़ाई पे लगा, बेटे की शादी भी की। बहू जो आई उसकी आए दिन जो है वो सास के साथ लड़ाई, और बेटा चाहता तो नहीं था कि ये लड़ाई हो, जाहिर है फिर फंसा। बीवी ने कहा कि मुझे तेरे वालदेन की खिदमत करने का कोई शौक नहीं, और मैं बस थक गई उस चीज से, तू नौकरी शहर में ढूंढ और हम यहां से चले। अब बूढ़े वालदेन को छोड़ के शहर में जाना तकलीफ दे बात है वालदेन के लिए, मगर मजबूर इतना हो गया, लड़ाई झगड़े इतने और आए दिन की एक तमाशा इतना, इसने सोचा कि शहर चला जाऊंगा, इतना दूर भी नहीं है शहर, बेहतर कमाऊंगा तो अपने माल से वालदेन की मदद कर लूंगा, और आना जाना भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं, छुट्टी वाले दिन आ जाया करूंगा। तो गया तो कुछ माली तौर पे भी मदद करना शुरू कर दी, आना जाना भी रखा उसने, मगर आहिस्ता आहिस्ता बीवी को ये भी पसंद नहीं आया। अब बीवी तो जालिम थी ही सही, मगर आहिस्ता आहिस्ता शोहर भी जुल्म पे मजबूर हो गया, वो जितना रोकती तो उसका आना जाना कम हो गया, पैसे पे भी उसकी नजर थी, उसने पैसे देने पे भी बहुत पाबंदी लगाई, मगर कुछ ना कुछ करके वो मदद कर ही देता था कि अब मैं क्या करूं, और कुछ नहीं तो कुछ पैसे ही भेज। बीवी को ये भी पसंद नहीं आया कि ये अब भी क्यों ताल है। बीवी ने शोर मचाना शुरू किया कि जी ये जो तू कमाता है ये हमारे लिए काफी नहीं है, बीवी कुछ और कमा और पीछे पड़ रहा। बहुत पीछे पड़ के उसने कहा मुल्क से बाहर कोई नौकरी ढूंढ। उसने कहा इससे दो फायदे होंगे, पैसे भी ज्यादा मिलेगा और ये पूरी तरह से कट जाएगा, इसकी पूरी तवज्जो हमारी तरफ ही होगी। अल्लाह का करना ये हुआ, इंजीनियर था, वालदा ने इंजीनियर बनाया था उसको, तो सऊदी अरब में नौकरी मिल गई, सऊदी अरब पहुंच गया। सऊदी अरब में जाके बीवी ने बिल्कुल पीछे से रब्ता कटवा दिया, ना पैसे भेजने देती ना ही वापस जाने देती। नेक आदमी था, करना नहीं चाहता था, बस मजबूर था, बच्चे हो गए थे, बच्चों से भी दूरी मुमकिन नहीं, तलाक भी मुमकिन नहीं, आखिर को नेट रिजल्ट ये निकलता कि बस वालदैन वालदैन के साथ ज्यादती हो रही है। 13 साल हो गए वहां पे सऊदी अरब में, हर साल हज करता, नेकी इतनी थी, मगर 13 साल में ना वापस गया ना वालदेन को पैसे भिजवाए, 70 की दिहाई के वाकयात में से, 80 की दिहाई, यानी इंटरनेट का हालात तो इस तरह से नहीं थे। राब्ते के हालात तो अब क्या हो गए हैं, वैसे नहीं थे, राब्ता वैसे भी मुश्किल था। मुझे तेरहवा जब हज मुकम्मल किया, तो हज मुकम्मल करने के बाद जब तवाफ कर रहे थे बैतुल्ला शरीफ के, तो नजर पड़ी एक अल्लाह वाले पे। तो इंजीनियर साहब उन अल्लाह वालों के पास गए और बैठ के पहले तो दहाड़े मार मार के रोए। मैं अपनी बात बताना चाह रहा हूं, मगर बात बता भी ना सके, उससे पहले ही रोना शुरू कर दिया। जब कुछ तबीयत संभली, बुजुर्गों ने पूछा कि जी क्या हुआ मामला। उसने कहा, हजरत 13 साल से हज कर रहा, हर साल हज के बाद ख्वाब में आवाज आती है कि हमें तेरा हज कबूल नहीं। इस पे रोना। वो अल्लाह वाले भी कुछ साहिब बसीरत है। ये देखो अजीब बात है, उन्होंने ये पूछा, क्या तेरे वालदैन जिंदा है? तब ये सारा वाकया उन्होंने पूछा कि 13 साल हो गए हैं, ना कुछ पैसे भिजवाए हैं मैंने उनको, ना उनकी खबर ली। बुजुर्गों ने कहा, 13 हज क्या, तू 1300 हज कर ले, अल्लाह के हम कबूल नहीं। जो जुल्म करता है वो अल्लाह के हम। तो बड़ी हिम्मत करके, घर में झगड़ा करके 13 साल बाद वापस मुल्क आया, वालदेन से माफी मांगने के लिए। अपने गांव गया, डर भी लग रहा था कि किस मुंह से अपने वालदेन के सामने। तो इस डर की वजह से अपने मोहल्ले के अंदर जब दाखिल हुआ तो घर नहीं गया, कुछ लोग वहां थे उनसे पूछ लिया कि फला जगह पे वो फला मियाँ बीवी बूढ़े रहते हैं, उनका क्या हाल है। मैंने कहा, पहले पता चल जाए कि क्या सूरत है। तो हमने कहा, हाँ मियाँ बीवी तो रहते थे, शौहर उनका फुत हो गया है, और बीवी जो है वो भी बीमार बिस्तर पे होती है, आंखों से भी मासूम है, उसको नजर भी नहीं आता, बूढ़ी औरत। फिर कहते हैं कि उसका कोई बेटा भी सुनाया था, मुल्क से बाहर चले गया, बदबख्त ने कभी रابطہ भी नहीं किया। ये सुन के उसका दिल और परेशान हुआ, आंसू बहाता हुआ घर के दरवाजे पर पहुंचा कि इस माँ से मैं कैसे माफी मांगू, कि वालिद फौत हो गया मुझे पता भी नहीं चला, वालदा बीमार हो गई आंखों से नाबीना हो गई, पता ही कोई नहीं, खबर ही कोई नहीं, यानी जुल्म कैसा। मगर ये जो मजबूरी में जुल्म किया जाता है, जब इंसान नहीं चाहता कि मैं करूं मगर कर बैठता है, इस जुल्म को अल्लाह ताला माफ भी जल्दी करते हैं और इसके मदावे का रास्ता भी अल्लाह निकालते हैं। इंसान की नीयत नहीं होती है। सोच रहा था कि मैं जाऊंगा तो इस माँ ने तो मुझे मुंह भी नहीं लगाना, इसने मुझे कह देना है कि तू बाहर निकल जा, मेरे सामने ही ना। बड़ा डरते डरते अपने घर के दरवाजे पे गया, अभी घर के अंदर दाखिल हो ही रहा था तो माँ चारपाई पे बाहर सहन के अंदर लेटी हुई थी और ऊंची आवाज में दुआएं कर रही थी, या अल्लाह मेरा शोहर भी ले लिया, मैं भी बीमार हूँ, मेरी बीनाई भी चली गई, मेरा एक बेटा था वो भी मुझसे जुदा हो गया, अब मेरा भी जाने का वक्त करीब है। बस अल्लाह मैं चाहती हूँ कि मेरे इस बेटे को मैं एक मरतबा फिर से मिलूं, तो तू उसको भेज दे। अब ये दुआ ये सुन रहा था तो इसको हिम्मत मिल गई, अंदर जाके इसने बहुत ही आंसुओं के साथ रोना रोते हुए कहा कि मैं तेरा बदबخت बेटा आ गया हूँ, तुझसे माफी मांग। और माँ आखिर माँ होती है, उसने कहा तू तो परेशान क्यों होती, बस मैं तुझसे एक ही बात करना चाहता, मेरी आंखें नहीं है, मैं तुझे देख नहीं सकती, मेरे सीने से लग जा, मैं तुझे गले तो लग सकती। अल्लाह, माँ ने माफ कर दिया। फिर वहां रहा, जिस इलाके का ये वाकया है, इन बुजुर्गों ने ये वाकया सुनाया, उन्होंने कहा कि उस सफर में कुछ अरसा ये माँ के साथ ही रहा, हत्ता कि कुछ दिनों बाद वालदा भी फौत हो गई। वालदा को फौत होने के बाद दफना के फिर वापस अपनी नौकरी पे सऊदी अरब आया। फिर 14वां हज किया। जब 14वां हज किया तो कुछ दिन बाद ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि तेरा ये हज कबूल और तेरे पिछले सारे हज भी कबूल। तो इंसान जुल्म करता है, जालिम बन के जुल्म करता है, फिर तो मुंह की खाता है, जो नुकसान दूसरों को दिए हैं वो नुकसान आते रहेंगे, बच नहीं सकता। फिर एक होता है इंसान मजबूरी में जुल्म करता है, चाह रहा होता है कि किसी तरह से जुल्म से निकल आऊं मैं, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते भी बनाते हैं और अल्लाह ताला उसके लिए माफी का भी बंदोबस्त फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें जालिम बनने से महफूज फरमाए, इंसाफ पसंद बनने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.